अध्याय चार। सूर, भक्ति में जीने की चाह। सूर के काव्य में कृष्ण भक्ति, काव्य और संगीत की ऐसी त्रिवेणी है जिसके प्रवाह ने व्यापक धार्मिक असहिष्णुता के उस कठिन समय के बीच रामचंद्र शुक्ल की शब्दावली में कहें तो जीने की चाह बनी रहने दी। सूफी काव्य ने यदि हिंदुओं को अपनी ओर आकृष्ट किया तो कृष्ण भक्ति काव्य ने मुसलमानों को। तब समझ में आता है कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति किस प्रकार है और कैसे भक्ति भाव काव्य की प्रेरक शक्ति बनता है, न कि सीधे धर्म या कि मतवाद। हिंदी साहित्य का केंद्र परिवार का जीवन रहा है, जो एक प्रकार से आदि महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत की परंपरा से सीधा चला आता है। हिंदी रचनाकार मूलतः परिवार में विकसित जीवन मूल्यों को संजो कर रखता है। पद्मावत तथा रामचरितमानस का विधान इन्हीं जीवन मूल्यों की सुरक्षा में तत्पर है। परिवार का एक मुख्य आकर्षण वहां पर अपने वाला बाल्य जीवन है, जहां वयस्कों के तनाव भी जैसे शमित हो जाते हैं। गृहस्थ घर की पूरी दिनचर्या बालकृष्ण के निमित्त से अंकित हुई है सुरसागर में। फिर सूरदास की भाषा में बोलचाल का संस्कार ऐसा गहरा है कि जिससे उनका गृहस्थ जीवन का चित्रण अपने आप में प्रामाणिक दिखता है। कुल मिलाकर सूर इस बाल्य जीवन के अद्भुत चितेरे हैं। कला और सहजता का विलक्षण संयोग इस चित्रण में हुआ है, जो कि यहाँ के संदर्भगत रचनात्मक आवश्यकता है। इस क्रम में लगेगा कि सारे अलंकारों का चरम साध्य स्वभावोक्ति हो जाना है। सूर के अनलंकृत पद प्रायः हर प्रसंग में विनय, बाल वर्णन, मुरली विषयक तथा अन्यत्र भी अलंकृत पदों की तुलना में अधिक काव्यात्मक बन पड़े हैं। कहना न होगा, सामान्य जन के बीच ये पद ही विशेष रूप से प्रचलित है। दूसरी ओर ये विविध वर्णन क्रम सुरसागर को एक मुक्तक प्रबंध का रूप देते हैं, जहाँ मुक्तक पदों का विन्यास कुछ ऐसा हुआ है कि एक सूक्ष्म कथा का ताना बाना अपने आप फैल गया है। प्रबंध में यदि कथा का विन्यास संभव होता है तो मुक्तक की सुविधा है कि एक ही चरित्र या के उपकरण को लेकर विविध प्रकार की कभी कभी परस्पर विरोधी भी प्रतिक्रियाओं का अंकन वहां बन पाता है। भगवान के प्रति भक्त बालकृष्ण के प्रति यशोदा के समवयस्क ग्वालिन, मुरली को लेकर गोपियों का आकर्षण, फिर खीज, उदासीनता, विरक्ति के विविध भाव अलग अलग भंगिमाओं में इस विधान के अंतर्गत उकेरे जा सके हैं। लक्षित करने की बात यह भी है कि जिन मुक्तक पदों का अनलंकृत विधान है, वहाँ ब्रज की सहज बोलचाल एक एक चेष्टा में रसी बसी है, जबकि अलंकृत पदों में तत्सम शब्दावली का पूरा दबाव है। यों वर्ण्य विषय, भाषिक संस्कार तथा अप्रस्तुत विधान का स्वरूप सब एक दूसरे के मेल में चलते हैं। सूर में कला और अकला एक दूसरे से ओढ़ लेती लगती है। अलंकारों का पक्तिबद्ध अभ्यास क्रम एक ओर है, जैसे उपमा हरितनु देख लजानी या कि मुख पर चंद डारो वारी, तो दूसरी ओर है निपट अलंकृत काव्य विधान, जैसे मुरली प्रसंग में मेरे दुख को ओर नहीं, अथवा दान लीला के अंतर्गत को माई लय है री गोपाल ही। एक अनुमान यह हो सकता है कि अलंकृत पदों की रचना रसिक समाज के बीच गायन के लिए विशेष रूप से हुई हो, जबकि सीधे साधे अनलंकृत पद सामान्य जन के आस्वादन के लिए हो। जो भी हो, सूर्य काव्य की ये दोनों धाराएं सुरसागर में आदि से अंत तक देखी जा सकती हैं। कवि के अप्रस्तुत विधान की प्रशंसा में हजर प्रसाद द्विवेदी की प्रेक्षामूलक उक्ति स्मरणीय है। इनोटेड कामा, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। इनोटेड कामा बन, हिंदी साहित्य की भूमिका। अलंकार विधान के विवेचन में वर्षा का यह रूपक निश्चय ही उपयुक्त है और अपने अनलंकृत सहज काव्य में सूर सागर वस्तुतः सागर है, मर्यादित और प्रायः शांत, बाढ़ और वर्षा से निरपेक्ष। इन विरोधी काव्य विधानों के साथ सकने की क्षमता में सूर कवित्व की विराटता आसानी से परिलक्षित हो जाती है। अनलंकृत काव्य विधान भाषा के सामान्य व्याकरणिक रूपों को अनायास अपने तुक लय विधान में समेट लेता है। मैया बहुत बुरो बलदाऊ, सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सखाऊ, और सूर का अलंकार विधान कितना आयासहीन है, इसका उल्लेख तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के साक्ष्य से भी हुआ ही है। सूर काव्य का विवेचन करते हुए आचार्य शुक्ल ने उनकी मौलिक उद्भावना शक्ति की कई संभाव संदर्भों में सराहना की है। इस स्तर पर आलोचक ने उन्हें अपने प्रिय कवि तुलसी से कुछ ऊंचा ही माना है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह निर्णय उन्होंने सूर और तुलसी दोनों के अलग अलग विवेचन क्रम में यथावत रखा है। सूर के प्रसंग में वे लिखते हैं, ये नोटेड कामा, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते, नोटेड कामा। और ठीक ऐसा ही पर्यवेक्षण तुलसी के संदर्भ में किया गया है। उद्भावना वस्तुतः कल्पना, तर्क और सामान्य पर्यवेक्षण क्षमता का मिला जुला रूप कही जाएगी। सूर के यहाँ उद्भावना कविकर्म का प्रधान अंग दोनों संदर्भों में है, अनलंकृत काव्य विधान में भी और अलंकृत काव्य विधान में भी। कहना न होगा दोनों स्थितियों में उद्भावना की दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं। उद्भावना क्षमता के उदाहरण बाल लीला, श्रृंगार प्रकरण, मुरली या नेत्र संबंधी उक्तियों में दोनों प्रकार के मिल जाते हैं, जबकि वात्सल्य प्रसंग अधिकतर स्वभावोक्त की ओर झुके हुए हैं। एक दिन नंद चलाई बात, संदेशो देव की सो कहियो, और ऋतु या उत्सव वर्णन अप्रस्तुत विधान पर आधारित अधिक है। आज घन श्याम की अनुहारी, झुमक सारे तन गौरे हो। एक मोटा विभाजन कुछ यूं हो सकता है कि स्थिर सौंदर्य वर्णन चाहे मानवीय या कि प्राकृतिक आलंकारिक, और चेष्टा वर्णन चाहे बाल प्रसंग में अथवा श्रृंगार लीला में सहजता के लिए हुए हैं। इस क्रम में जोड़ा जा सकता है कि पहले प्रसंग प्रायः तत्सम नामवाची शब्दावली के लिए चलते हैं, जबकि दूसरे तरह के प्रसंग तद्भव क्रियावाची पदों से युक्त हैं। हिंदी भक्ति काव्य विशेषतः कृष्ण भक्ति काव्य को परंपरा से बहुत कुछ दाय मिलता है। ऐसे में कवि की उद्भावना शक्ति ही उसे पिष्टपेषण से बचा सकती है। यों परंपरा से चले आते प्रसंगों को कवि ने अपनी सूझबूझ से संवारा है। जलक्रीड़ा वर्णन श्रृंगारिक प्रकरणों का एक प्रिय विषय रहा है। पद्मिनी और उसकी सखियों की जलक्रीड़ा पद्मावत में जायसी ने बड़ी रुचि लेकर अपेक्षा विस्तार में अंकित की है। सूर का वर्णन जायसी जैसा उघरा उन्मुक्त नहीं, यहाँ एक प्रकार से अलंकारों का आच्छादन कवि की अपनी युक्ति है। आध्यात्मिक संकेत जायसी में भी हैं, पर सूर की चीरहरण लीला तो पूरी तरह आध्यात्मिक स्तर को भौतिक से मिलाकर चलती है। चीर मानवीय शरीर के लिए अभिप्राय जैसा है, जैसा कहा गया कल्पना, तर्क और पर्यवेक्षण यहाँ सब एक दूसरे में खुल मिल गए हैं। इस उद्भावना शक्ति से ही संभव है कि सूर ने एक एक प्रकरण पर सैकड़ों पद कहे हैं, पर उबाने वाली पुनरावृत्ति से बचकर। मिलते जुलते अप्रस्तुत विधान में भी कभी कोई एक तत्व ऐसा जोड़ देता है कि समूचे वर्णन का परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। देखिए तकालिंद अतिकारी के सांग रूपक की भंगिमा बदल जाती है। गोपी की सीधी उक्ति से सूर्यदास प्रभु जो जमुना, गति सो गति भई हमारी, जो पद की अंतिम पंक्ति है। मुक्तक प्रबंध होने के नाते सुर सागर में कवि को यह विशेष सुविधा रही है कि राधा कृष्ण के प्रेम की विविध स्थितियों का सूक्ष्म संवेदनशील विकास क्रम यहाँ बड़ी सावधानी के साथ अलग अलग यद्यपि की एक ढीले बंधान में अंकित हुआ है। प्रथम दर्शन से लेकर अंत में कुरुक्षेत्र मेले के अवसर पर कृष्ण के सानिध्य में राधा रुक्मिणी भेंट तक पद्मावत के मसनवी शैली के प्रबंध से सुरसागर के मुख तक प्रबंध का यह अपना वैशिष्ट है, जिसकी सुविधा असुविधा अपनी जगह है। प्रेम की पीर और विरह पीर के यों दोनों अपने अपने ढंग के प्रकथन हैं। जिस बिंदु पर अपरिपूर्ण प्रेम के रूप में उक्त प्रसंग संपन्न होता है, वहाँ उन्मुक्त रोमांस और पारिवारिक प्रणय जैसे एक दूसरे में गुंथ गए हों। पाना और खोना यहाँ दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। इससे बड़ा मानवीय यथार्थ क्या हो सकता है और आध्यात्मिक सत्य भी। यह पाना और खोना रामचरितमानस के समापन में भी है, जहाँ कड़े संघर्ष और युद्ध के बाद सीता को घर लाकर राम फिर अंततः खो देते हैं। पद्मावत की गाथा भी बहुत कुछ ऐसे ही पूरी होती है। रत्नसेन दिल्ली की कठिन कैद से छूटकर एक सामान्य प्रतिद्वंदी देवपाल के हाथों मारा जाता है और पद्मिनी नागमती के साथ सती हो जाती है। सुरसागर के समापन में राधा माधव की भेंट होती है, पर फिर से बिछुड़ने के लिए। राधा माधव भेंट भई, बिहसी कहियो हम तुम नहीं अंतर, यह किया कहीं के उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित नई नई। प्रेमियों की यह सनातन नियति है कि वर्तमान में विलग होकर वे अनंत भविष्य में एक दूसरे से मिलते हैं। इस बिंदु पर भक्ति और हरे प्रसाद द्विवेदी के प्रिय उद्योग में सेकुलर कवियों की दृष्टि एक जैसी है। यह अवश्य है कि भक्त को आस्तिकता का सहारा है, जो अन्य को सुलभ नहीं। नास्तिक के लिए प्रेम वस्तुतः आग का दरिया है, जिसमें डूब के जाना है। इस स्थिति के निराकरण में यदि प्रेम भक्ति और अध्यात्म एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो यह उचित ही है जो रास्ता भक्त कवियों ने अपने लिए चुना। सुरसागर ब्रजभूमि की विराट प्रकृति के बीच विकसित ऐसी ही प्रेम गाथा है, तब उसका विधान मुक्तक प्रबंध के रूप में ठीक रचा गया है। जहाँ पहले सांकेतिक मुक्तक और प्रबंध दोनों का वैशिष्ट समोया हुआ है, बाल कृष्ण का क्रमिक आयु वर्धन तथा युवा कृष्ण की प्रेम लीला का विकास, ये दोनों विकास क्रम सुरसागर को एक उन्मुक्त प्रबंध का रूप दे देते हैं। विविध पदों में बाल कृष्ण के जन्म से लेकर नंद यशोदा के पास बीते 12 वर्ष के आयु क्रम तथा तत्संबंधी घटनाओं उत्सवों के संकेत कवि ने सोच समझकर विन्यस्त किए हैं। इस महत्वपूर्ण युक्ति की ओर ध्यान सुर साहित्य के विशेषज्ञ पंडित उमाशंकर शुक्ल तथा डॉक्टर वजेश्वर वर्मा ने अपने अध्ययनों में दिलाया है। इस कथाक्रम के अंतर्गत ही सुरसागर का विधान वैशिष्ट उजागर होता है। स्पष्ट ही यह काव्य विधान कबीर जायसी तथा परवर्ती तुलसी और मीरा से एकदम अलग है। फिर संगीत के सहज संयोग में इसकी प्रभविष्णुता और बढ़ जाती है। जहां तुक और लय व्यवस्था पूरी तरह निर्दोष हुई है, प्रेम लीला का सूक्ष्म कथा क्रम दर्शाने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। अपने युवावस्था के आरंभिक दिनों में गोपियां कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं, उसे सपत्नी जैसा मानती हैं कि कृष्ण हर समय उसके अधिकार में रहते हैं और वह सतत उनका अधर रसपान करती है। वहीं मुरली जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों की विरहावस्था में उनकी सखी बन जाती है। कृष्ण और गोपियों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में याद आती है। परीखों कौन बोल कौ की जय, बरसियो सुख ना तो गोकुल को और हमारे अंग, सूर श्याम व गई सगाई वा मुरली के संग। क्योंकि मथुरा जाने पर गोपियां और मुरली दोनों कृष्ण की ओर से परित्यक्ता हो गई हैं, तो पुराने ईर्ष्या पात्र मुरली अब गोपियों के लिए स्नेह और सहानुभूति की पात्र हो गई है। यहाँ महज स्थूल घटना का वर्णन नहीं, उससे जुड़े सूक्ष्म भाव लोक में परिवर्तन का अंकन भी हुआ है। भक्ति काव्य परंपरा के विवेचन में निर्गुण सगुण का मत पार्थक्य बहुत बार उठाया जाता है। आचार्य शुक्ल के इतिहास ने जिसे और संपुष्ट कर दिया है, यहाँ समझना होगा कि यह विभाजन अध्ययन के संदर्भ में व्यावहारिक अधिक है, तात्विक कम। इस प्रसंग में सुरसागर की आरंभिक प्रतिज्ञा बहुत स्पष्ट है, अभिगति गति कछु कहत न आवय, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावय, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावय। कथा के स्तर पर यदि सुरसागर कृष्ण लीला का गायन है तो वस्तु के स्तर पर यहाँ निर्गुण सगुण की बहस और अंततः सगुण की विजय को दर्शाया गया है। उपर्युक्त काव्य प्रतिज्ञा निर्भ्रांत रूप में कहती है कि परम तत्व वस्तुतः तो निर्गुण ही है, पर भाषिक व्यवस्था उसे सगुण बना देती है। याद करें विंगस्टाइन को, जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में मौन का अवलंबन उचित होगा, पर जहां दार्शनिक पराजित अनुभव करता है वहां कवि अपना कुछ रास्ता निकाल लेता है। कवि की प्रतिज्ञा के बाद काव्य कृष्ण लीला गायन का रास्ता ले लेता है। फिर निर्गुण सगुण बहस की प्रस्तावना स्वयं कृष्ण उपस्थित करते हैं। जब वे ज्ञानी सखा उद्धव को अपना दूत बनाकर गोपियों के पास ब्रज भेजने की योजना बनाते हैं, इस युक्ति में उनका दोहरा उद्देश्य सजता है। एक तो नंद यशोदा और गोपियों के पास कुशल संदेश पहुंचता है, दूसरी ओर ज्ञान गर्व में लीन उद्धव का अहंकार टूटता है। कृष्ण जैसे लीला पुरुष के यह सर्वथा योग्य है। हल्के व्यंग में डूबा प्रस्तावना का पद यों है, जदुपति जान उद्धव रीति, जहि प्रगट निज सखा कहियत करत भाव अनीत, बिरह दुख जग जह नाहि नय कहूँ तह न उपजय प्रेम, रेख रूप न बरन जाकय इह धरियो वह नेम, त्रिगुण तन करि लखत हमको ब्रह्म मानत और, बिना गुण क्या पुहुमहि उधरय यह कहत करत मन डौर, बिरस रस के मंत्र कहिए क्यों चलय संसार, कछु कहत यह एक प्रगटत अति भरयो अहंकार, प्रेम भजन नय कुयाको जाय क्यों समुझाय, सुर प्रभु मन यह आने ब्रजहि देव पठाई। निर्गुण सगुण बहस की ओर प्रस्तावना बन जाती है, जिसकी पदावली रेख रूप न वर्णन जाकर सीधे प्रारंभ की प्रतिज्ञा से जुड़ी है। रूप रेख जुन जाति जुगत भी उद्धव का ज्ञान मार्ग और योग का है, कृष्ण का है प्रेम का, जिसे उद्दीप्त करने के लिए संयोग के साथ साथ विरह भी अपेक्षित है। फिर भ्रमर गीत के अनेक मार्मिक पदों में ब्रजवासियों और उद्धव के बीच चली बहस के बाद उसकी तार्किक परिणति आती है, जब उद्धव मुक्त कंठ से अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। निष्पत्ति का यह प्रसिद्ध पद है, अब अति चकितवंत मन मेरो आय हो निर्गुण उपदेशन भयो सगुन कौचेरो, सूर मधु उठी चले मधुपुरी बोरी जोग कौ बोरो। प्रतिज्ञा प्रस्तावना युक्ति और निष्पत्ति एक पूरा तार्किक क्रम है, अत्यंत सघन भावनात्मक पदों का। जैसा कहा गया, रचना का ऐसा बंधान अपने में अतुलनीय है। वस्तुतः समूची भारतीय परंपरा में ही वैदिक वांग्मय से लेकर शंकराचार्य होते हुए विवेकानंद तक अद्वैत और भक्ति के विलक्षण संयोग मिलते हैं। सूर का भ्रमर गीत इस क्रम में दर्शन और काव्य का अनुपम संयोग है। तब निर्गुण सगुण को लेकर यह लंबी चौड़ी शास्त्रीय बहस के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। तत्व चिंतन के रूप में अद्वैत, व्यवहार जगत में भक्ति या द्वैत ही भक्त कवियों द्वारा अधिकतर साधा गया है, क्योंकि द्वैत में प्रेम और सौंदर्य चित्रण की संभावनाएं अधिक हैं। अद्वैत और भक्ति को साथ साथ स्वीकार करने पर भक्त कवियों ने सगुण रूप में अलग अलग इष्ट देव मानते हुए भी राम और कृष्ण के अवतार रूप में तात्विक एकता पर बल दिया है। यह कारण नहीं कि मुख्यतः कृष्ण लीला के गायक सूर भले प्रतीकात्मक रूप में कुछ पद रामचरित विषयक भी रचते हैं, और इधर रामचरितमानस के कवि तुलसी कृष्ण गीतावली लिखते हैं। यह काव्यात्मक सौजन्य शिष्टाचार भर नहीं कवि की रचनात्मक आस्था का विस्तार है। वस्तुतः रामकृष्ण की एक रूपता की भावना दक्षिण से अलवार भक्तों के समय से चली आती है, जैसा इस अध्ययन के आरंभिक परिच्छेद में दिखाया गया है। अलवारों के अनेक पदों में कवियों ने जैसे सजग रूप से रामकृष्ण की वर्णनात्मक एकता प्रदर्शित की है, स्पष्ट ही भक्ति काव्य में केवल भक्ति तत्व को छोड़कर किसी और प्रकार की एकांतिकता को प्रश्रय नहीं दिया गया। स्वयं सूर्य ने राम और कृष्ण की एकता का संदर्भ बड़े कोमल और मार्मिक रूप में उठाया है। बाल कृष्ण को सुलाने का उपक्रम चल रहा है, यशोदा उन्हें राम कथा सुना रही है। सुनि सुत एक कथा कहो प्यारी, कथा का समापन होता है। रावण हरण सिया को कीन हो, सुन नंद नंदन नींद निवारी। चाँप चाँप कहे उठे सूर्य प्रभु, लक्ष्मण देहु जननी भ्रम भारी। असोए बाल कृष्ण को पिछला राम अवतार स्मरण हो आता है और वे तंद्रा में छोटे भाई लक्ष्मण से राक्षसों के वध के लिए अपना धनुष मांगने लगते हैं। माँ यशोदा तब स्वभावतः यह सुनकर चकित विभ्रमित हो जाती है। सूर्य की उद्भावना क्षमता बहुत बार घटना प्रसंगों के स्तर पर और बहुत बार उनके सूक्ष्म व्यंग से भी उपजती है। कहना न होगा मार्मिकता का समावेश अधिकतर यही होता है। सूर संभवतः अकेले ऐसे कवि हैं जिनके यहाँ व्यंग से गंभीर कविता बनती है। व्यंग का प्रकार विशेषतः भ्रमरगीत प्रसंग में विनोद की सृष्टि नहीं, करुणा की प्रतीति है। व्यंग तब काव्य का विषय न होकर उसकी प्रक्रिया बनता है। यहाँ उदाहरण के लिए एक पद पूरा उद्धृत करना होगा। संदर्भ स्वभावतः गोपियों का संदेश है। संदेश है कृष्ण के लिए जिन्हें पटरानी कुब्जा सहित ब्रज में कुछ दिन रहने को निमंत्रित करते हुए। कहियो ठकुरायती हम जानी, अब दिन चार चलहों गोकुल में, सेवहूँ आय बहुरी रजनानी। हमको हौस बहुत देखन की, संग लिए कुबिजा पटरानी। पहुनाई ब्रज को दधि माखन, बड़ो पलंग रुतातो पानी। तुम जानी डरऊ खलतो तरयऊ, दावे रिहू अब भई पुरानी। वह बल कहाँ जसो मति कह कर, दे रावर सोच बढ़ानी। सुरभि बाँट गई ग्वालन को, मोर चंद्रिका सभय उड़ानी। सूर नंद जू के पालांगो, देखो आये राधिका स्यानी। यहाँ कृष्ण को मिली मथुरा की नई नई ठकुराइती और गोकुल के पुराने निपट ग्रामीण परिवेश को आमने सामने कर देने मात्र से गहरा व्यंग उभरता है। ऐसा व्यंग जो हमें गुदगुदाता नहीं, सूक्ष्म करुणा की सृष्टि करता है। एक एक शब्द प्रयोग और संदर्भ कृष्ण की पुरानी शरारतों और उन्हें उसके लिए दंड को स्मरण कराते हुए उनके नए राजकीय परिवेश से उन्हें टकराते हैं। वर्ण्य प्रसंगों में जो शरारत है उससे कहीं अधिक शब्दों की भंगिमा में है। अंतिम पंक्ति में वयसंधि पार हुई। राधिका स्यानी का संदर्भ जैसा कुशल है वैसा है कारुणिक भी, विशेषतः कुबिजा पटरानी के सामने। बड़ो पलंग सूक्ष्म रूप में कुब्जा की शारीरिक वक्रता की ओर संकेत करता है विनोद की मुद्रा में। यों कुल मिलाकर एक एक प्रसंग अलग और अपने विधान में समूचा पद सूक्ष्म व्यंग की भंगिमा एक ओर लिए है तथा दूसरी ओर गोपियों की अवस्था और दीनता को उनकी करुणा में उजागर करता है। व्यंग और करुणा आमने सामने आकर एक दूसरे को पैना बनाते हैं। कबीर के व्यंग में तीखापन अधिक है, सूर के व्यंग में पैनापन। ऐसा शायद इसलिए हो कि कबीर के व्यंग का समग्रतः लक्ष्य सामाजिक रूढ़ियां हैं, जबकि सूर का लक्ष्य है दार्शनिक मतवाद। सूर के काव्य में विरल स्थलों पर जहां व्यंग की संभावना या की अपेक्षा नहीं है, वहां कवि सीधे सीधे इतिवृत्त से काम चलता है। जैसे रुक्मणी परिणय का प्रसंग या कि बलभद्र की ब्रज यात्रा, यहाँ छंद लय की सजग अवहेलना करके इतिवृत्त वर्णन जैसे जल्दी जल्दी आगे आ जाता है। रुक्मणी प्रणय का इतिवृत्त मानो काम आता है जो कवि अंत में राधा रुक्मणी की भेंट कुरुक्षेत्र में दिखाता है। रुक्मिणी राधा ऐसे भटी जैसे बहुत दिनन की बिछुरी एक बाप की बेटी। यों रुक्मिणी का चित्रण महज इतिवृत्त से आगे काव्य संस्पर्श पाता है राधा के संपर्क। यहाँ सूर की काव्य भाषा की बनावट में बिंब विधान के योगदान का कुछ विवेचन प्रासंगिक होगा। बिंब प्रक्रिया भले भारतीय काव्यशास्त्र में अवधारणा के रूप में न आई हो, पर बिंब प्रयोग कई रूप में हमारे कवियों में द्रष्टव्य है। सूर इस क्षेत्र में अग्रणी है। रचना की भाषिक प्रक्रिया में बिंब की क्षमता जटिल अनुभूतियों के सूक्ष्मांकन में अच्छी तरह समझी जा सकती है। बिंब की मुख्य प्रक्रिया दृश्य तत्वों को उभारने में उतनी निहित नहीं जितने कि किसी जटिल और गतिशील भाव चक्र को अर्थ की द्वंद्वात्मक शक्ति से परिचालित कर देने में है। इसी माने में बिंब मूलतः दृश्य चित्रण से अधिक अर्थ संश्लेषण है। गोपी के प्रणय की आकुलता का अंकन सूर्यों करते हैं। सदा रहे मन चाक चढ़ियो सो और कछु न कछु सुहाई, करत उपाय बहुत मिलबे कौ यह विचारत जाई। सूर सकल लागत ऐसी सो दुख कासो कहिए, ज्यों अचेत बालक की वेदन अपने ही तन सहिए। सुर सागर सार अध्याय 4 57 श्लोक। यहाँ पहली पंक्ति में प्रेमी जन की अस्थिरता और व्याकुलता को व्यक्त करने के लिए पाले घूमने वाले चाक का एक प्रचलित अप्रस्तुत लिया गया है, पर बहुप्रचलित और किसी कदर रूढ़ हो जाने के कारण यह प्रस्तुत बिंब फिर बिंब के रूप में संक्रमित नहीं हो पाता। यद्यपि मन की सूक्ष्म प्रक्रिया को रूपायित करने के लिए वह एक उचित दृश्य उपकरण है। अर्थ संश्लेषण के रूप में बिंब की असली शक्ति अंतिम शक्ति में अनुभूत होती है। मन की व्याकुलता जिसे चुपचाप अपने आप सहना है को अंकित करने के लिए पीड़ित पर अचेत बालक का बिंब विकसित किया गया है। इसी बिंब में सारी स्थिति की पीड़ा, निरीहता, निर्दोषता और साथ ही अवस्था का जो द्वंद्व एक साथ उभरता है वह गोपियों के सरल, निश्चल पर मर्मांतक पीड़ा देने वाले प्रणय को पूरी बारीकी और सुकुमारता में अंकित कर देता है और अर्थ प्रक्रिया कहीं पूरी होकर खत्म होती नहीं जान पड़ती, वरन निरंतर विकसनशील लगती है। पहली और चौथी पंक्ति का अंतर यहाँ स्पष्ट हो जाता है। सदा रहे मन चाक चढ़ियों में एक बहुप्रचलित अप्रस्तुत होने के कारण अर्थ की सूक्ष्मता और गति नहीं है। घूमने की एक ही क्रिया को सांकेतिक करने के कारण यहाँ अर्थ का द्वंद्व नहीं चलता। चाक चढ़ियो इसीलिए बिंब नहीं बनता, एक मुहावरा जैसा होकर रह जाता है जिसमें दृश्यमयता है, संश्लिष्टता नहीं। पर अंतिम पंक्ति में बालक की पीड़ा, निरीहता, निर्दोषता आदि के अनुभव एक दूसरे से टकरा कर एक सूक्ष्म प्रक्रिया को परिचालित करते हैं और इस प्रकार बिंब की अपनी क्षमता को उन्मुक्त करते हैं और तब यह बिंब पूरे पद में अलग थलग अप्रस्तुत विधान नहीं लगता, वरन चुपके से समूची भाषा का अंग बन जाता है। काव्य भाषा की बनावट में पौराणिक संदर्भ और मिथ का जो अंतर है वैसा ही अंतर अलंकार और बिंब के बीच में है। संदर्भ और अलंकार भाषा के विन्यास में उभरे से रहते हैं जबकि मिथ और बिंब भाषिक संरचना में घुल जाते हैं। एक दूसरा बिंब कुब्जा प्रसंग काले, कुबड़ी कुरूप कुब्जा को रसेश्वर कृष्ण के संदर्भ में ग्राह्य बनाना संवेदना के स्तर पर एक कठिन कार्य है। यों कृष्ण पर ब्रह्म के अवतार हैं और वे जिस पर चाहे जिस रूप कृपा कर सकते हैं, पर अनिंद्य सौंदर्य से युक्त कृष्ण मनुष्य रूप में भी हैं और कुरूप कुब्जा कैसे उन्हें भा गई इसका कोई संतोषजनक और विश्वसनीय समाधान काव्य की रचना प्रक्रिया के स्तर पर कवि को देना है। कृष्णचरित के प्रमुख गायक सूरदास का यह और भी प्रधान दायित्व हो जाता है। कृष्ण और कुब्जा के इस अटपटी दिखते संबंध को कवि ने एक बिंब के बीच से अंकित किया है। कुब्जा गोपियों को पत्र लिखती है, हाँ तो दास कंस राई की देखो मन है विचारी, फलन माज ज्यो करो ही तो मरी रहत घुरे पर डारी, अब तो हाथ परी जंत्री के बाजत राग दुलारी, तनु तय टेण सब को जानत परस भई अधिकारी, सूरदास स्वामी करुणामय अपने हाथ सवारी। यहाँ देखा जा सकता है कि कवि ने किस प्रकार सांग रूप के विधान को अस्वीकार कर दिया है। कवि द्वारा थोड़े से अंतर से सांग रूप के अंतर्गत तोमरी को कड़वाहट टेढ़ापन उसका तिरस्कृत होना, फिर किसी कुशल वादक के हाथ पड़कर उसका बीन होकर मीठा राग प्रसारित करना, ये सब तत्व क्रमशः तुलनीय हो सकते थे। कुब्जा की कुरूपता, उसका विकृतांग होना, समाज में तिरस्कृत होना, फिर कृष्ण के अनुग्रह से उसके सौंदर्य विकसित होने से। पर सूर पहली पंक्ति में प्रस्तुत का उल्लेख करके छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे कड़वी तो मरी का बीन में रूपांतरित होने का बिंब उभरता है। तब हम कृष्ण और कुब्जा के निकट संबंध को अधिक गहरे और संवेदनात्मक स्तर पर ग्रहण करते हैं। कुब्जा के निपट कुरूपता बीन की गहरी सुर लहरी में विलीन हो जाती है। सूर के बिंब विधान में से अक्षक चुना हुआ एक और प्रसंग है। गोपियां उद्धव के योग संदेश को अस्वीकार कर लेती हैं, पर यह अस्वीकार काव्य के स्तर पर ऐसा होना चाहिए जिससे कि उद्धव का अपमान न हो और कृष्ण के लिए भी कोई संकोच की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाए कि यह योग संदेश गोपियों को एकदम अग्राह्य है। इस जटिल और सुकुमार मनस्थिति को एक विशिष्ट बिंब में से विकसित किया गया है। जो हित करी पठयो मनमोहन सो हम तुमको दीनो, सूरदास जो विप्र नारियर करहिं बंधन कीनो। ब्राह्मण का आशीर्वाद रूप में दिया गया नारियल भी गृहस्थ स्वीकार नहीं करता, हाथ से स्पर्श करके प्रणाम की मुद्रा में उसे वापस कर दिया जाता है। इस नारियल के प्रति पूरा सम्मान, उसकी पवित्रता को मान्यता पर उसे स्वीकार न करना और यह ध्यान रखना कि देने वाले ब्राह्मण का अपमान न हो, यह बिंब गोपियों के योग संदेश के प्रति दृष्टिकोण के बड़े सटीक और मार्मिक ढंग से व्यक्त करता है। विप्र नारियर का बिंब समूचे भक्तिकालीन काव्य के संदर्भ में बेजोड़ है। इन सभी बिंबों में देखा जा सकता है कि प्रस्तुत का उल्लेख हल्का है, विस्तार अकेले प्रस्तुत का है जो भाव की कल्पना शक्ति को सक्रिय होने के लिए अधिक छूट देता है। यही बिंब अप्रस्तुत विधान के सामान्य रूप से अलग होकर भाषिक प्रक्रिया का अंग बन जाता है। सुर सागर की बड़ी विशेषता यह है कि अधिकांश में वह घटनात्मक या कि भावात्मक तनाव से मुक्त और मुक्तिकर है। वह आवेग संभव नहीं करता, उसे प्रशमित करता है अपने विनय भक्ति तथा लीला पदों में। यहाँ प्रख्यात सौंदर्य शास्त्री वाल्टर पेटर की उक्ति स्मरण हो आती है कि सभी कलाएं अंततः संगीत की स्थिति तक पहुँचना चाहती है। संगीत की स्थिति कहने का अभिप्राय संभवतः यह है कि यहाँ वस्तु और रूप का द्वैत भी ऐसे विलीन हो जाता है। इस रूप में सुर सागर का काव्य जैसे अपने में संगीत हो, फिर संगीत के सक्रिय साहचर्य में तो वह और उदात्त हो उठता है। वर्तमान यांत्रिक युग के भौतिक तथा मानसिक पर्यावरण प्रदूषण को किसी कदर निराकृत करने तथा उसे संतुलित रखने में वृक्षमाला और रागमाला की तरह इस काव्य की अपनी भूमिका हो सकती है। तनाव से यह मुक्ति जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा पहले रेखांकित जीने की चाह का ही आधुनिक संस्करण हो।